Tratatra hatatra dyer harif pratyudyatarhanaha sayang peje dishang paschad gavishto gam gatastada. In prantong se hoka yatra karte samai unka kinka? Huh? Krishna Bhagavan ka swagat kiya gaya, puja ki gayi aur unhe vividha bhete pradan ki gayi. Sandhya samay sare sthano mein sandhya kalin anushtan kritya karne ke liye Bhagavan apni yatra sthagit karte. Suryast ke baad niyamit roop se aisa kiya jata. Suryodai aur suryast ke bare mein ek shlok hai Srimad Bhagavat ka. Dvitiya skand. Ayur harati vaipungsan udyan astam chayanaso tasyarte yat kshano nita uttama shloka vartaye. Suryodai or suryast. Suryadev ki yatra karne se har ek vyakti ka आयु क्षीण होते. यदि किसी व्यक्ति उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते तो उनका आयु क्षीण होते. सबका आयु क्षीण होते, सब शरीर का क्षीण होते. इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी कुछ भक्तों मेरे पास आते बोलते कि आज मेरा बर्थडे है या मेरी बेटी की का बर्थडे है. और उत्तर में मैं बोलता आज केवल नहीं, हर एक दिन उसका डेथ डे है. हम सब जीवन यात्रा में है और यात्रा का अंतिम गति मृत्यु. परंतु जो उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान करते हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर है. काल के अतीत स्तर पर है. इसलिए वे उनका जीवन यात्रा सफल करते हैं जिससे वे अंतिम काल में अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाश्चत्र संसार. तो सब यात्रा करते हैं संसार चक्र में. इस प्रकार ब्रह्मांड भ्रमित है. एते ब्रह्मांड भ्रमे अनंत जीवगण चौरासी लाख योनि थे खड़े ये भ्रमण. तो इस प्रकार हम भ्रमण करते हैं. और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम केवल एक और यात्रा करेंगे भगवान कृष्ण के पास समझेंगे और उसके बाद और भी यात्रा नहीं करना है. यद गतवान निवर्तन थे तद धाम परम मम. तो इसलिए कृष्ण भगवान का गुणगान करना चाहिए. वैदिक संस्कृति में काल के अनुसार बहुत कृत्य होते हैं. पहले है क्या है दिन में दिनाचार्य में क्या करना पहले उठना. सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में, और उठने के साथ क्या करना है? गुरु वंदना, भगवान का स्मरण, और जो कर्म कांड्य है तो अनेक पुण्यशाली लोग के स्मरण करेंगे, और विशेषकर माताएं के लिए पुण्य नारियों का स्मरण करना है। और इस प्रकार सूर्य की गति के अनुसार दिन में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कृत्य है। तीन संध्या में द्विजगण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का क्या करना है? गायत्री जाप करना है, उसके अलावा और क्या? संध्या वंदना, केवल गायत्री जाप नहीं है, बड़ा कृत्य है। हम तो केवल गायत्री जाप करते हैं, लेकिन वास्तव में तो बड़ा कृत्य है, तो कम से कम 45 मिनट लगेगा ऐसे वो सब करना। और यदि दूर जाना है स्नान करने के लिए तो और भी अधिक समय लगेगा। तो ये सब करना है कर्म मार्ग पर, जिसके बारे में नरोत्तम दास कहते हैं कर्म खंड ज्ञान खंड केवल विषयरा भंड अमृत बलि अजैव खाय नाना जोनि सदा फेरे खदार्ज बखन न करे तार जन्म अधो फते जाए। जो कर्म मार्ग पर है या ज्ञान मार्ग पर है वे उसको अमृत जैसे मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब विष है, विष विष। वो श्लोक है इंद्रिय समय राजसिक सुख इंद्रिय संयोगम विषयेन्द्रिय संयोगम यथाग्रे मृथोपम परिणाम विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृत। तो जो पहले अमृत जैसे लगते और बाद में परिणाम से विष जैसे होते, वास्तव में शुरुआत में भी विष होते, क्योंकि वो विषयेन्द्रिय संयोग सुख है, जिसके बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरू आरंभ अंत और बीच में भी सब दुख का कारण है। श्लोक क्या है? ये ही संस्पर्शजा भोग दुख योनि एवते आद्यंतवंत नतेषु रमते बुद्धा। लेकिन मूर्ख लोग तो उसको अमृत जैसे लगते, परिणाम में अनुभव करते कैसे वो विष है। कर्म खंड ज्ञान खंड और कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होता है? नाना योनि सदा फिरे खदार या भखम न करे। श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया है कि वो पक्षी क्या बोलते, कुआ कुआ काक 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 कौआ कौआ बंगाली में का 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 बोलते, और हिंदी में इस प्रांत में वो का का आवाज थोड़ा अलग है, क्वा 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 ऐसे है, और बंगाली क्वा का 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 बोलते। और हम जो हम टूटते वो कफ कस यही मौसम में और शीतकाल में वो बहुत गहरा है नहीं, और उस खो आते और आनंद से खाते। आप सब देखा है नहीं? और श्रील प्रभुपाद के सबसे प्रिय उदाहरण इसके बारे में है कि सुआ का नाश्ता ताज़ा गरम सुस्वादु और पुष्टिकर भी है। बहुत सुस्वाद, स्वाद बहुत अच्छा है नहीं सुआ के लिए। आप कोई तैयार है उसका खाने के लिए? नहीं। कदार जब अखन थार जन्म आधो पाते जाए, जो कर्म खंड पर है तो नीचे जाते हैं, नरोत्तम दास कहते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन है कि उत्तम श्लोक अर्थात शास्त्र में कितने श्लोक है वेद शास्त्र में? हाँ पंडित कहो, कितने श्लोक है शास्त्र में? गिनना संभव नहीं, असंख्य असंख्य श्लोक है। और सब श्लोक का मूल उद्देश्य हरि भगवान का गुणगान करना है नहीं? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। किंतु कुछ श्लोक साक्षात रूप से भगवान हरि का गुणगान करते हैं और कुछ परोक्ष रूप से। कुछ श्लोक में कुछ नहीं, बहुत श्लोक में कर्म मार्ग की प्रशंसा होती है और कर्म मार्ग के निर्देशन होते और ज्ञान मार्ग भी है, विशेष का उपनिषद शास्त्र में। उत्तम श्लोक है वो सभी श्लोक जिसमें से भगवान हरि का साक्षात स्पष्ट गुणगान होते, यथा श्रीमद् भागवत में। तो जिनका गुणगान होते उत्तम श्लोकों के द्वारा, उनका नाम है उत्तम श्लोक, और वे भगवान श्री कृष्ण हरि, जिनका वर्णन इस श्रीमद् भागवत में सुस्पष्ट रूप में है। जन्माद्यस्य यतः शब्द से लेकर पूरा भागवत में और अंतिम श्लोक तक। और श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि कर्म कांड ज्ञान खंड सब क्या है। श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक में क्या बोलते हैं ये सबों के बारे में? किस प्रकार का धर्म? कैतव धर्म, कैतव धर्म। तो यहाँ पर वर्णन है कि भगवान हरि उत्तम श्लोक स्वयं कर्मकांड कृत्य करते हैं। तो यदि भगवान कहते तो हमें भी करना चाहिए नहीं? और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमको व्याख्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते हैं साधारण लोग का कारणीय दिखाने के लिए। तो गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग करना चाहिए। तो साधारण लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं करते उनके लिए कर्म कांड करने चाहिए, वास्तव में हर एक व्यक्ति का पूरा तन्मय होना चाहिए कृष्ण भक्ति में, जैसे बंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, जो पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हुए और उनका कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसे था वो बाह्य जगत के बारे में, जिस उन यहाँ पर वर्णन है सूर्योदय सूर्यास्त। तो बंशीदास बाबा जी महाराज जैसे भक्तों, जैसे भक्तों बहुत बहुत कम है वैसे, जो जगत से इतना उदासीन होते हैं कि क्या सूर्योदय हो रहा है, हो गया, सूर्यास्त हो रहा है, उनका ज्ञान नहीं है, दिन रात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनका शरीर इस धरती पर है परंतु उनका मन वृंदावन में है, गोलोक वृंदावन में है। तो वैसे ही सभी भक्त ऐसे होने चाहिए, ठीक है? तो गुरुकुल छोड़ो, नंदग्राम छोड़ो, और वैसे ही उदासीन होकर तो घूमना है, घूमना या नहीं घूमना, एक जगह में भी रह सकते हैं। तो जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु, केवल कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है का मतलब भोजन लेना कि नहीं, उसके बारे में भी चिंतन नहीं है। और ना ही लेना या ना ही लेना, ऐसे भक्त का कुछ ज्ञान कुछ स्मरण नहीं है। तो सब तैयार है ऐसे जीवन के लिए? नहीं, नहीं। हाँ तो क्या करना, कर्मकांड? नहीं तो हम क्या करेंगे, हम साधना भक्ति करेंगे ना, साधना भक्ति। और हम देखते हैं कि हमारे परम पूज्य श्रील प्रभुपाद भी तो बंशीदास बाबा जी जैसे जीवन यापन नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था हमको ऐसा मार्ग सिखाना जैसे हम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। हम जो ये भौतिक जगत में पतित हो गया है तो कैसे हमारा उद्धार होगा? हाँ, श्रील प्रभुपाद और सभी पूर्वाचार्यों हमको मार्ग प्रदर्शन किया है। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में एक वृतांत है कि चतुर्सन अर्थात चार कुमार नाम सनत सनातन सनंदना सनक, तो बड़े ज्ञानी है नहीं, और सदैव दार्शनिक तत्व का चिंतन करते हैं। तो एक बार उन्होंने आपस में वार्तालाप किया एक दार्शनिक प्रश्न के बारे में, और आपस में तो उत्तर नहीं मिले, इसलिए उनके पिताजी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछे कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में हैं और जीवन का उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना भौतिक जगत से, परंतु उसका मतलब कि मन तो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की वासना से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। परंतु सब कुछ जो हम करते हैं हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, और सदैव इंद्रियों और इंद्रिय के विषय तो संयुक्त होते हैं, और कई इंद्रियों तो विषय सभी उस वो इंद्रिय विषय कैसे अलग बनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों कैसे चलते हैं विषयों का अनुभव करने से, आंखों में से हम अलग अलग रूप देखते हैं, कानों से हम अलग अलग शब्द सुनते, तो कैसे इंद्रियों तो इंद्रिय के विषय से मुक्त हो सकते। तो ब्रह्मा जी से पूछे और ब्रह्मा जी का उत्तर क्या था,
मुझे भी मालूम नहीं।
तो सबसे बड़े ज्ञानी ब्राह्मण में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो उस समय उनके बीच अचानक एक बहुत सुंदर हंस उपस्थित थे और सबको बताया कि प्रश्न महत्वपूर्ण है और उत्तर अन्वेषण करने में एक विषय को भूल किया, वो है मैं, हंस अवतार है, कृष्ण का स्मरण करने चाहिए। ऐसो सब इंद्रियों के द्वारा यदि हम सदैव सर्वत्र सर्वथा भगवान कृष्ण को देखेंगे तो उससे हम इंद्रिय और इंद्रिय विषय भोग से बाध्य नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि सर्व जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्मृति। शुद्ध भक्तों सब कुछ जो देखते हैं कि ये सब कृष्ण भगवान सदैव सर्वत्र भगवान कृष्ण को देखते हैं, और देखते हैं कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, भगवान की सृष्टि है, भगवान की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार सब कुछ देख के सुन के स्पर्श करके इत्यादि सदैव इंद्रिय तृप्ति से मुक्त रहते और सदैव मुक्त होते। यह यस्य हरेर दास्यै कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व्यप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। जो मन धन धन इंद्रियों सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और उनकी सेवा में लगाते तो भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी जीवन मुक्त बोलते। तो भगवान कृष्ण कर्मकांड कृत्य कहते हैं और हम भी करना चाहिए। यदि हम पूरा तन्मय नहीं है कृष्ण सेवा में तो हम भक्ति साधना करना चाहिए, और यदि हम सक्षम नहीं है, वास्तव में सबका अधिकार है भक्ति करना, लेकिन यदि किसी भी कारण से हम भक्ति करने के लिए भक्ति साधना करने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो हम कर्मकांड पालन कर सकते। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार प्रयास किए अर्जुन को प्रोत्साहित करना अपना धर्म पालन करने के लिए, और अर्जुन की आपत्ति थी कि ये अपना धर्म पालन करना अच्छा है समझता हूँ, परंतु यही अवस्था में अपना धर्म पालन करने से तो अधर्म होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि मा मनुस्मृ युद्ध च कर्मकांड, जो लोग करते हैं नरक से बचाने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए, वो सब करने चाहिए भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, और यदि हम ऐसे करेंगे तो उसको कर्म योग बोलते, और जो भक्ति योग करते साधना भक्ति तो वे भी वैदिक अनुष्ठानों भी पालन करते जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। बहुत कुछ है जो कर्मकांड या ज्ञानकांड और भक्ति योग भी सब करते, बहुत कुछ वे एक ही करते, जैसे कि कर्मकांड में, ज्ञानकांड में, भक्तिकांड में, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान का नाम उच्चारण करना है, जो कर्मकांड पर है तो शायद भगवान हरि का नाम कहेंगे और अलग अलग देवताओं का नाम भी कहेंगे और देवियों तो देवियों का नाम कहेंगे। तो इस प्रकार कर्मकांड में भी ऐसे चिंतन है, ध्यान है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम देव देवियों की कृपा से परतंत्र है, और भक्ति योग में ये अस्वतंत्रता चिंतन की संसिद्धि है कि कृष्ण भगवान से सब देव देवियों के स्वामी है। तो कर्मकांड करने से पुण्य अर्जित होते, गीता में श्री कृष्ण कहते येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां विरभता। पुण्यशाली लोग जो द्वंद्व द्वंद्व बुद्धि और वो श्लोक क्या है उदार नहीं 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 गीता का श्लोक नहीं है इदाम वो क्या है इदामध्या अभी तो याद नहीं, ये मेरा है वो नहीं 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 वो गीता का श्लोक नहीं है वसुधैव कुटुम्बकम् उदार चरिता हाँ पहला पंक्ति का आयाम निज आयांग वेति परो वेति गणना लघु चेतसम उदार चरिता उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है वो दूसरे के है ऐसे लघु चेतस लोग ऐसे सोचते, और जिनके उदार चेतस है देखते हैं कि सब मेरे स्वजन है, तो ऐसे सोचते कौन जो समझते कि परम पिता है कौन नरेंद्र मोदी नहीं कृष्णा पिताहम अस्य जगत माता दात पितामह अहम बीज प्रद पिता इत्यादि। तो कर्मकांड में, कर्मकांड क्या है? वो काम, क्रोध, लोभ, ये सब वेग जो आसुरिक है, वो सब नियंत्रण करना। लोग जो भौतिक कामनाएं करते हैं, तो यदि कर्म कांड करने से कामनाएं की पूर्ति करते हैं और प्रयास करते हैं, उसलिए तो कर्मकांड पालन करने से वो कामनाएं की पूर्ति मिलते है। कांक्षंता कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हे देवताः। फिर उसके बाद क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब जल्दी, शीघ्र ही, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो कर्म सिद्धि होती, पूरी सिद्धि है। तो कर्म कांड पालन करने से तो भौतिक इच्छाएं की पूर्ति होती है। उसमें वो कर्मकांड में वो देवी देवियों की स्तुति करने हैं, पूजा करने हैं, और इस प्रकार वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से पुण्य होते हैं, धीरे धीरे हृदय शुद्धि होते हैं। अब हृदय शुद्धि का प्राथमिक भाग और कर्मकांड में भी विष्णु आराधना होती है, विशेषकर सभी यज्ञ में यज्ञेश्वर है भगवान विष्णु। और विशेषकर जो कर्मकांड पालन करते हैं, यदि भगवान का शुद्ध भक्त का संग मिलता तो वैदिक संस्कृति के अनुसार ऐसे साधु का स्वागत देना, जैसे कुरु जंगल इत्यादि प्रांतों के लोग भगवान कृष्ण और इनके साथ सब परिका जो है ब्राह्मण ऋषि मुनि जो उपस्थित थे सबका स्वागत करते। तो लोग का विश्वास है कि यदि हम एक साधु का स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमारा कल्याण होगा। और सही है कि साधु जन का दर्शन करने से, चरण पूजा करने से, खिलाने से इत्यादि सेवा करने से संसारी लोग के पाप से मुक्त होते और पुण्य अर्जन करते। और ये सब साधु यदि वास्तविक साधु है तो उनको कहेंगे, और साधारण लोग को कहेंगे कृष्ण कथा सुनेंगे कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते मनुष्यम आर्तदम अनित्यम अपि हधीर तूर्णम यतेत न पते धनु मृत्ययाव निश्रयसय विषय खलु सर्वतस्य। वास्तविक साधु साधारण लोग को कहते हैं कि ये मानव जन्म, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, अभी प्राप्त किया है, और ज़्यादा समय वो ये मानव शरीर धारण करना संभव नहीं है। तो मृत्यु के पहले, यही जन्म का मृत्यु के पहले ऐसे कृत्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। वो सब इंद्रिय सुख जिसलिए आप प्रयास करते हैं तो वो मिलते हैं, सब अन्य जीव जाति में भी मिलते हैं, परंतु केवल मानव जीवन में यही परम कल्याण मिल सकते हैं जिससे पुनर्जन्म चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए धीर होने चाहिए। जो काम क्रोध लोभ पारायण है तो धीर नहीं है, अधीर है, सदैव भौतिक सुख की आकांक्षा करते हैं। तो कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं, तो कैसे नियमित भगवान कृष्ण स्वयं का आदर्श चरित्र से शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। तो मानव जीवन तो नियमित होना चाहिए, विधि निषेध के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य तो पशु जैसे है। आजकल बहुत प्रचार होते हैं फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता, या हम जो करने चाहते हैं हमें करने चाहिए, और विशेषकर नारी स्वतंत्रता बहुत प्रचारित होते हैं। तो जो ऐसे प्रचार करते हैं तो नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है उत्तम कल्याण प्राप्त करना, जो संभव नहीं है तो पशुवत जीवन यापन करना चाहिए। जैसे कुत्ता और कुत्ती के जीवन में कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो करना चाहते करते, और इसलिए वो जीव तो कुत्ता का शरीर मिलते। तो जो सब नियम से स्वतंत्र होने चाहते, नारी स्वतंत्रता, तो उनको बताना है क्या ठीक है, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो देहांत प्राप्ति के अनुसार तो 80 लाख जन्म में अवसर मिलेगा, कुछ नियम पालन करने का जरूरत नहीं होगा। नियम पालन करना पड़ेगा जबरदस्त से, प्रकृति के नियम, लेकिन वो माया होते, वो धारणा होते है कि हम मुक्त है, हम स्वतंत्र है। तो मानव जीवन में उस सब नियम स्वेच्छा से ग्रहण करना चाहिए, जिससे अनंत ब्रह्म सुख मिल जाते। नायम देहो देह भाजांग रिलोके कष्टान कारमान आरहते वीरभुजम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सद्वम शुद्यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंद। मानव जीवन में नियम बाधित होना चाहिए, तो सुआ जैसे विष्ठा खाने वाले सुअर जैसे जीवन यापन नहीं करते, इंद्रिय सुख का हेतु से। तो दिव्य तपस्या करना चाहिए, जिससे अनंत ब्रह्म सुख उपलब्ध होते हैं। तो वो वैदिक कर्म मार्ग प्रथम सोपान है, प्रथम, और उसके ऊपर है ज्ञान मार्ग है, और सर्वोत्तम है भक्ति भक्ति मार्ग है, और उसके अतीत शुद्ध भक्ति है। तो भगवान कृष्ण दिखाते हैं तो साधारण लोग के लिए तो कैसे नियम बाधित जीवन पालित होना चाहिए। और कृष्ण भगवान तो कर्म कांड कृत्य पालन करते हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत में करते। भगवान कृष्ण कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, सदैव मुझको चिंतन करो, और वे सद स्वयं करते। भगवान कृष्ण सदैव स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं, हम भी वैसे करते नहीं, हम जो भी हम करते हैं हम सदैव स्वयं का चिंतन करते हैं। तो क्यों हम ऐसे करते हैं? क्योंकि हम कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण वैसे करते हैं। और भगवान कृष्ण और द्वारका में वो वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कृष्ण प्रभात का समय ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर। और भगवान कौन है? कृष्ण स्वयं के ऊपर। तो सब आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में श्रेष्ठ कृष्ण भावनामय व्यक्ति है कृष्ण। तो कृष्ण इस प्रकार हमको दिखाते हैं। तो सब कुछ जो हम करते हैं वो सब कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण एक कर्म मार्ग पालन करते हैं स्वयं को चिंतन करके। और हमारे लिए कृष्ण और जो कर्म मार्ग पर है उनका कृष्ण चिंतन करके और कर्म मार्ग पर चलना चाहिए। और इस प्रकार जो कृष्ण भगवान का चिंतन करते हैं वो व्यक्ति तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो पूरा धार्मिक हो जाएगा, कृष्ण धार्मिक, कृष्ण भक्ति धार्मिक बन जाएगा और कृष्ण के पास जाएंगे। और साधारण कर्म मार्ग में भी कृष्ण का स्मरण होता है, क्योंकि कृष्ण का नाम उच्चारण करना है भिन्न भिन्न मंत्रों में। परंतु सामान्यतः कर्म कांडीय लोक का स्पष्ट धारणा नहीं है कि भगवान विष्णु सर्वोत्तम उत्तम श्लोक परमेश्वर भगवान है। वे कृष्ण का नाम उच्चारण करते, शिव जी का नाम उच्चारण करते, देवी पार्वती का नाम उच्चारण करते, इंद्र चंद्र वायु इत्यादि का नाम। तो इसलिए ऐसे लोग का वास्तविक साधु से कृष्ण भक्त से सुनना चाहिए, जिससे वे कर्मखंड पालन करने से पतित ना हो। जिससे कर्मखंड पालन करने से वे भक्ति मार्ग पर आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
कई ऐसे कृत्य हैं जो समान हैं योग में और कर्मकांड में, लेकिन ऐसे कृत्य भी हैं जो समान नहीं।
हाँ हाँ, ऐसा बोला था ना कि वो जो अनुकूल है भक्ति के लिए फालित होना चाहिए और जो प्रतिकूल तो वर्जित होना चाहिए।
भगवान जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज में तो ऐसे कृत्यों के विषय में भगवान जो कि असमान है उनका फिर क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? भगवान की देवताओं की पूजा करके
दिखाएंगे? भगवान कृष्ण जैसे देव देवियों की पूजा की वो खराब नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त तो सामान्यतः नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यथाथरोमूल निषेचन क्षिप्यंत तत्स्कंध भुजोपशाख प्राणोपहार्च यथेन्द्रियाण तथा सर्वाहनमच्युतेज। यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो अनन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ये तो होती है भगवान कृष्ण की पूजा करने से। लेकिन लोग जो इस सिद्धांत नहीं जानते उनके लिए देवियों की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो वे वैदिक संस्कृति के बाहर जाएगा, चंडाल हो जाएगा, नियम बाधित नहीं होंगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम, वो श्लोक क्या है? नानुवर्तयति हा। तो वो कौन सा मार्ग के बारे में, कौन सा कर्म चक्र के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं? कर्मकांड। तो कम से कम जिससे हम पतित ना हो, कर्मकांड पालन करना चाहिए। लेकिन कर्मकांड पालन करने से यदि हम कृष्ण भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं लेते तो अधोपतन होगा। चारिवर्ण आश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकाम करते से रौरवे परे मजे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।